नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब प्रभु के अनुग्रह से कुशल पूर्वक हैं और प्रभु के वचन की संगति में बलवंत हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन निश्चय ही हम सब से बातें करता है, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, यह सबके लिए है। पिछले अध्ययन में हम पहाड़ी उपदेश और उसके सारांश को देख रहे थे जो परमेश्वर के राज्य में लागू किया जाएगा। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इसमें हम कुछ मुख्य विषयों पर विचार करेंगे, जैसे यीशु प्रदर्शित करते हैं कि उसके पास पहाड़ी उपदेश के नीति विषयक को लागू करने और सक्रिय बनाने का सामर्थ है। तो आइए हम परिचय देखें। पिछला अध्याय पहाड़ी उपदेश का समापन करता है। यह मित्र और शत्रु के द्वारा एक जैसे बात को स्वीकार कर लिया गया है कि पहाड़ी उपदेश में जो नीति विषयक बातें दी गई है उससे बढ़कर कोई नीति नहीं दी गई है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे एक व्यक्ति उस उच्च स्तरीय नीति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मत्ती चमत्कारों की एक श्रृंखला को हमारे सामने लाता है जो यह प्रदर्शित करता है कि जिसने यह नीति दी है उसके पास गतिशीलता को प्राप्त करने की क्षमता है। हमारे प्रभु ने इसे हमें पूर्ण रीति से स्पष्ट कर दिया जो उसके विश्वासी हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5 पद में। मेरी इच्छा है कि हम सब इस सत्य को हमेशा अपने सामने रख सकें। आप और मैं अपने से कुछ भी ऐसा नहीं उत्पन्न कर सकते हैं जो परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य हो। आज मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं जिसे उसने इस संसार में भेजा है कि हमारे द्वारा उस कार्य को पूरा करे जिसे हम नहीं कर सकते हैं। मित्रों, यह एक विशेष बात को प्रकट करता है। यहां पर मत्ती यीशु मसीह की जीवनी देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और न ही वह उसकी सेवकाई को क्रमानुसार श्रृंखला में रखने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वह हमें एक गति दे रहे हैं जिसे हम न खोएं। राजा पहाड़ पर गया वह अपने घोषणा पत्र को घोषित करे जो राज्य की व्यवस्था थी। अब वह पहाड़ से नीचे उतरते हैं और हम देखते हैं कि वे 12 चमत्कार के काम करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि जब वह इस पृथ्वी पर शासन करेंगे तो उनके पास राज्य की व्यवस्था को लागू करने और सक्रिय करने की सामर्थ होगी। मित्रों, जैसे मैंने पहले ही सलाह दी थी कि पहाड़ी उपदेश संभवतः एक संक्षिप्त संस्करण है। सतयुग या परमेश्वर के राज्य में हमें असंक्षिप्त बातें मिलेंगी, जिसका मतलब है कि अभी बहुत सी बातों का होना बाकी है। मित्रों, अध्याय 8 और 9 में मत्ती हमें 12 चमत्कार के बारे में बताते हैं, जबकि वह सभी चमत्कारों को देने की कोशिश नहीं करते हैं जो राजा के सामर्थ को प्रस्तुत करते हैं। वह इसे एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो आइए मैं आपके ध्यान को उन 6 चमत्कारों की ओर ले चलूं जो हमारे सामने इस अध्याय में दिए गए हैं। पहला, कोढ़ी को शुद्ध करना। हमारे प्रभु उसे छूते हैं। मनुष्य की यह बीमारी बहुत ही खराब है। दूसरा, सेनापति के दास को दूर से ही चंगा करते हैं। शारीरिक रूप से उसका कोई भी संपर्क उस दास के साथ नहीं हुआ। तीसरा, पत्रस की सास को वह छू कर चंगा करते हैं। चौथा, वह दुष्ट आत्मा को बाहर निकालते हैं और यहां पर वह आत्मा के अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पांचवा, समुद्र को और तूफान को शांत करते हैं। समुद्र प्राकृतिक परिमंडल में आता है और वह प्राकृतिक परिमंडल में भी अपनी सामर्थ को प्रदर्शित करते हैं। छठवा, गदरेनियों के 2 पुरुषों से दुष्ट आत्मा को बाहर निकालते हैं जो आत्मा के संसार में एक बहुत कठिन काम है। मित्रों, राजा इन सभी विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और मत्ती इन्हें क्रमानुसार नहीं लिखते हैं, परंतु तर्कसंगत तरीके से लिखते हैं। मत्ती के लेख में एक निश्चित कार्य का वर्णन है। आइए अब हम मत्ती की पुस्तक में आएं। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, जब वह पर्वत पर से उतरा तो एक विशाल जन समूह उसके पीछे चल पड़ा। मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक विशाल जन समूह उसके पीछे चल पड़ा। वहां सिर्फ कुछ लोग या थोड़े ही लोग नहीं थे। आप देखें कि वह कफरनहूम में था जो उसका मुख्यालय था, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद का चमत्कार भी वहीं हुआ। वास्तव में यह प्रश्न उठता रहा है कि वह कहां पर था जब उसने पहाड़ी उपदेश दिया। मैंने बहुत से सिद्धांतों को पढ़ा है, लेकिन मैं नहीं सोचता कि हमारे लिए उस क्षेत्र या स्थान को जाना महत्वपूर्ण है। हमें यह बताया गया है कि जब वह पर्वत पर से नीचे उतरा तो एक विशाल जन समूह उसके पीछे चल पड़ा। क्या जो राजा नैतिक घोषणा कर सकता है और वो मानव जाति के मध्य अपने सामर्थ्य के साथ चल सकता है? मित्रों यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरा एक मित्र था जो देखने में बहुत आकर्षक और प्रसिद्ध था, लेकिन बुरी आदत बुरी संगति में फंस गया और शराब पीने की आदत के कारण उसे सेवकाई छोड़नी पड़ी। जब पढ़ाई खत्म हुई और पदवी समारोह के अवसर पर वक्ता ने बड़ा प्रभावी संदेश दिया, परंतु कमरे में आकर वो मुझसे कहने लगा, मुझे कोई यह ना बताए कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या करना चाहिए, परंतु यह बताए कि कैसे करना चाहिए। मेरे मित्रों हमें भी इसी की आवश्यकता है कि नहीं? अब राजा ने नैतिक घोषणा कर दी है, क्या उसके पास सामर्थ है? आगे हम देखते हैं कि यीशु एक कोढ़ी को शुद्ध करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 2 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और देखो एक कोढ़ी उसके पास आया और दंडवत करके उससे कहने लगा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मित्रों यहाँ पर ध्यान दे कि यीशु बिल्कुल ऊंचे पद से नीचे आए हैं। बाइबल में कोढ़ पाप का चिन्ह है जो ठीक होने वाली बीमारी नहीं थी। कोढ़ सबसे अधिक घृणित बीमारी थी, और जब यह कोढ़ी यीशु के पास आया तो उसने यह नहीं पूछा कि क्या तू मुझे चंगा करेगा। इस कोढ़ी के पास विश्वास था, वह मसीह के स्वामित्व को पहचान गया था, और उसी आधार पर उसने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे मित्रों जो कुछ भी हम मांगते हैं वह हमेशा प्रभु की इच्छा नहीं होती है, परंतु यदि यह उसकी इच्छा है तो वह इसे कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा आती है। हो सकता है कि यह आपके लिए आसान हो, परंतु यह मेरे लिए कठिन है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पहले रखूं। मैं उससे इस तरीके से रखता हूं, प्रभु क्या आप इसे करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे करें। परंतु कोढ़ी कहता है, मैं जानता हूं कि तू कर सकता है, परंतु क्या तू करेगा, अर्थात क्या यह आपकी इच्छा के अनुसार है। मित्रों यह थोड़ा भिन्न है जो हम आज लोगों को प्रार्थना करते हुए सुनते हैं। जब वे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से कुछ निश्चित मांग करते हैं कि प्रभु आप इसे करें। मित्रों क्या मैं आपसे कुछ कहूं, आप उसे ही निर्णय लेने दीजिए, और वैसे भी वो इसी रीति से किया जाएगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह कोढ़ से तुरंत शुद्ध हो गया। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यदि मैं किसी कोढ़ी को छूता तो क्या होता? हो सकता है कि उसकी बीमारी मुझे लग जाती और मैं उसे चंगा नहीं करता। परंतु ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले यीशु ने उसे छुआ। क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है, उस व्यक्ति को केवल कोढ़ की शारीरिक बीमारी ही नहीं थी, परंतु वह मानसिक रूप से भी बीमार था जो भयानक था। मैं इस व्यक्ति के पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानता हूं, परंतु मैं कल्पना करता हूं कि एक दिन उसने देखा कि उसके हाथ में एक फुंसी निकली। शायद वह खेत में हल चला रहा था और वह घर में आया होगा और अपनी पत्नी को दिखाया होगा, और उसने कुछ मलहम लगाए। दूसरे दिन वो फुंसी लाल हो गई, फिर भी वह हल चलाने के लिए गया। इस तरह से 1 हफ्ता बीत गया और उसकी पत्नी चिंता करने लगी। उसने सलाह दी कि वह याजक से मिले। वह याजक के पास गया और याजक ने उसे 14 दिनों तक अलग रहने के लिए कहा। इन दिनों की आखिरी समय तक वो फैल गया। याजक ने उससे बताया कि उसे कोढ़ है। उस व्यक्ति ने याजक से कहा कि क्या वह जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से विदाई ले सकता है। याजक ने कहा, मुझे क्षमा करें, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आप अपनी पत्नी को, बच्चों को अपनी बाहों में नहीं ले सकते हैं, या आप अपने बच्चों को भी गोद में नहीं ले सकते हैं। जब कोई तुम्हारे निकट आए तो अशुद्ध अशुद्ध कहकर अवश्य चिल्लाना। उसने अपने बच्चों को दूर से ही बड़े होते हुए देखा होगा। वे उसके लिए एक निश्चित स्थान पर भोजन रख देते थे और जब वे चले जाते तो वह आकर भोजन लेता था। वह उन्हें नहीं छू सकता था। वास्तव में वह किसी को भी नहीं छू सकता था और कोई भी उसे नहीं छू सकता था। और तब एक दिन वो यीशु के पास आया और कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु ने क्या किया? उसने उसे छुआ। मित्रों, क्या मैं आपसे कहूं कि यीशु मसीह का स्पर्श उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अद्भुत बात थी जो कभी भी उस व्यक्ति के साथ नहीं हुई थी। इससे न केवल वो उसके कोढ़ से शुद्ध हुआ, परंतु इसके द्वारा उसे फिर से मानव परिवार में और परमेश्वर के परिवार में शामिल किया गया। वह कोढ़ से तुरंत शुद्ध हो गया। हम मत्ती सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, और यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ा कि उन पर साक्षी हो। मार्कुस रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि यह व्यक्ति आनंद से इतना भर गया था और आप उस पर दोष नहीं लगा सकते हैं कि वह बाहर गया और जिससे भी वह मिला उसने उनको बताया। उसने चारों ओर इस बात को फैला दिया। परिणाम स्वरूप भीड़ हमारे प्रभु की ओर बढ़ी और भीड़ के दबाव के कारण उसे नगर से बाहर जाना पड़ा और वह जंगली स्थानों में रहा। यीशु सूबेदार के सेवक को चंगा करते हैं। अब हम देखते हैं कि यीशु कफरनहूम में प्रवेश करते हैं। हम मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय उसके 5 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जब उसने कफरनहूम में प्रवेश किया तो एक सूबेदार उसके पास आया और विनती करके कहने लगा। मुझे पूरा भरोसा है कि सूबेदार ने कोढ़ी व्यक्ति की चंगाई के बारे में सुना होगा। वह सूबेदार गैर यहूदी था और वह 60-100 का कप्तान था, अर्थात 100 लोगों का समूह जो रोमन साम्राज्य में रहते थे। लूका का लेख हमें बताता है कि उसने एक आराधनालय यहूदियों के लिए बनवाया था। यदि कोई स्थान है जो अस्तित्व में है जहां यीशु चला तो यही पुराना आराधनालय था। अब सूबेदार के निवेदन को सुनिए जिसे हम मत्ती 8 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु मेरा सेवक लकवे का मारा घर में पड़ा हुआ अत्यंत पीड़ा में तड़प रहा है। यह सेवक बहुत ही गंभीर स्थिति में था। तब हम फिर इसके आगे मत्ती 8 अध्याय उसके 7 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी शासन के अधीन हूं और मेरे अधीन सिपाही हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। मित्रों, सूबेदार एक अच्छे पद पर था जिसमें उसे अधिकार का पहचान था। वह रोमी वर्दी पहने हुए था और वह एक सैनिक से कह सकता था जो उसके अधीन था कि यह कर, और उसने किया क्यों? उसके अधिकार के कारण जो उसके पास था। उसने यीशु की ओर देखा और कहा, आपके पास भी ऐसा ही अधिकार है। उसने इस बात को जान लिया कि यीशु के पास उस प्रकार का अधिकार शारीरिक बीमारी पर भी है। हम मत्ती सुसमाचार 8 उसके 10 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जब यीशु ने यह सुना तो अचंभा किया और अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इसराइल के किसी व्यक्ति में भी ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। मित्रों, यह लिखा है कि 2 अवसर पर यीशु अचंभित हुए। एक समय वह था जब इसराइलियों का अविश्वास देखा और दूसरा इस सूबेदार का विश्वास। हम मत्ती सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 11 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में भोजन करने बैठेंगे। मित्रों, यह मजेदार बात है कि उसने कहा कि बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आएंगे। जिस समय हमारे प्रभु ने ऐसा कहा तब शायद मेरे पूर्वज आपके पूर्वज पश्चिम में थे, या शायद आपके पूर्वज पूर्व में थे। हमारे प्रभु ने कहा कि यह संदेश बाहर उन लोगों तक पहुंचने जा रहा है। ताकि वे इस पर विश्वास करें और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठ सकें। क्या ही अद्भुत वक्तव्य है। यह सच है कि प्रत्येक को व्यक्तिगत रीति से मसीह में विश्वास करना है अपने स्वयं के उद्धार के लिए। कोई भी व्यक्ति कलीसिया की सदस्यता या पारिवारिक परंपरा का या उसके माता पिता के मसीही होने से इस वास्तविकता का दावा कर सकता है। हम मत्तीर सुसमाचार 8 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरे विश्वास के अनुसार ही तेरे लिए हो, और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। मित्रों, यद्यपि बीमार सेवक यीशु के सामने उपस्थित नहीं था, परंतु सूबेदार के विश्वास के कारण वह चंगा हो गया। यीशु ने कोढ़ी को भी छुआ और वह चंगा अर्थात शुद्ध हो गया, और अब वह दूर से ही सूबेदार के सेवक को चंगा करते हैं। आगे देखते हैं, यीशु पत्रस की सास और अन्य लोगों को चंगा करते हैं। आगे हम तीसरी चंगाई के चमत्कार में आते हैं, जिसे हम मत्ती उसके 8 अध्याय के 14 और 15 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और जब यीशु पत्रस के घर आया तो उसके सास को ज्वर से पीड़ित बिस्तर पर पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। मित्रों, पत्रस की सास बुखार से पीड़ित थी, उसने उसे छुआ और चंगा कर दिया। यहां पर आप 3 प्रकार की बीमारियों पर ध्यान दीजिए। पहला कोढ़ है, जो ठीक नहीं हो सकता है। दूसरा विपत्ति या बीमारी या पक्षाघात, एक लकवा है। और तीसरी बीमारी बुखार है, संभवतः जो साधारण बीमारी है। चौथा चमत्कार संध्या के समय हुआ, जिसे हम मत्तीर सुसमाचार 8 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं। और जब संध्या हुई तो वे बहुत से दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाए, और उसने वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन सब को चंगा कर दिया जो बीमार थे। यहां पर दुष्ट आत्मा शब्द है। शैतान एक ही है, परंतु दुष्ट आत्मा अनेक हैं, क्योंकि बहुत से दुष्ट आत्माएं हैं, परंतु शैतान एक ही है। आइए मैं आपका ध्यान इस वास्तविकता पर लाता हूं कि वे बहुतों को उसके पास लाए, कोई भी एक व्यक्ति के विषय में नहीं बताया गया है। फिर से मैं कहता हूं कि यदि आप इस सुसमाचार को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, तो आप पाएंगे कि मत्ती इसे स्पष्ट करते हैं कि उस दिन निश्चित रूप से हजारों लोग चंगे हुए थे। उदाहरण के लिए, हजारों अंधे थे जो आप देख सकते थे, और हजारों लंगड़े लोग थे जो चल सकते थे एक साधारण व्यक्ति की तरह। वहां पर हजारों बहरे लोग थे, अब सुन सकते थे। यही कारण था कि यीशु के शत्रुओं ने उससे कभी प्रश्न नहीं किया कि उसने चमत्कार किया है या नहीं। इसके बदले में वे पूछते थे कि उसने उन्हें कैसे चंगा किया। हम मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय उसके 17 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, जिससे कि जो वचन यशाया नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। यह उद्धरण यशाया नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 4 पद से लिया गया है। संभवतः यह पद विश्वास द्वारा चंगाई देने वाले लोग अन्य लोगों से अधिक प्रयोग में लाते हैं। वे दावा करते हैं कि शारीरिक चंगाई प्रायश्चित में है, और वे इस पद का प्रयोग अपनी बात को बनाए रखने के लिए करते हैं। आइए हम यशाया की पुस्तक के पन्नों को पलटकर इन पदों को देखें, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता कि यह आधुनिक चंगाई क्रिया को कोई अनुमति देता है। यशाया की पुस्तक 53 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। मित्रों, हम किससे चंगे हुए? यह परिच्छेद यशाया से है, स्पष्ट रूप से बताता है कि हम अपने पाप और अधर्म से चंगे हुए। आप मुझसे कहेंगे, क्या आपको इसके बारे में पूरा भरोसा है? मैं जानता हूं कि ये पद इसी के विषय में बताते हैं, क्योंकि पत्रस भी कहता है, जिसे हम पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 24 पद में पाते हैं, उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरें और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। तो आप किससे चंगाई पाए? पापों से। पत्रस इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं कि वह पाप के बारे में बातें कर रहे हैं। हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मित्रों, यह मेरा और आपके अधर्म का बोझ था जो उसके ऊपर लादा गया। स्पष्ट रूप से यशाया उस सच्चाई की ओर संकेत कर रहे हैं कि मसीह एक बड़े मूलभूत पाप के साथ सामना करेंगे। चंगाई का दावा करना प्रायश्चित में है जो इसके अलावा है। तो क्या महिमामय शरीर प्रायश्चित में है परंतु मेरा अभी तक नहीं है? क्या आपका है? और एक नई पृथ्वी जो मसीह के द्वारा किए गए प्रायश्चित के साथ, जिसने पाप को दूर कर दिया, परंतु यह सच है कि अभी तक हमारे पास यह नहीं है। इन दिनों में जब पाप और शैतान अभी भी नियंत्रित करते हैं, तो बीमारी से कोई छुटकारा प्रायश्चित के आदेश सूचक जैसे नहीं है। पौलुस ने तीमुथियुस को पेट दर्द के समय थोड़ा दाखरस लेने को क्यों कहा? उसने उसे प्रायश्चित के द्वारा चंगाई प्राप्त करने के लिए निवेदन क्यों नहीं किया? याकूब ने संतों से क्यों निवेदन किया कि यदि कोई बीमार हो तो प्रार्थना के लिए कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए? याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 13 से 15 पद को आप देख सकते हैं। पौलुस ने क्यों चंगाई की मांग प्रायश्चित में नहीं की जब उसने इस सत्य को बताया कि उसके देह में एक कांटा चुभाया गया है? और हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 12 अध्याय 7 से 9 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, प्रकाशनों की अधिकता के कारण मैं घमंड न करूं, इसलिए मेरी देह में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वह मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके रहे। मैंने इसके विषय में प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि यह मुझसे दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। अतः मैं सहस अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह का सामर्थ मुझ में निवास करे। मित्रों, इस विषय से संबंधित और भी उदाहरण स्वरूप लेख हैं। फिलिपी में पौलुस के हाथ में निरंतर सेवा थी, इप्रोदितुस बीमार था, देखें फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय उसके 25 और 27 पद में, और पौलुस ने प्रायश्चित का उपयोग चंगाई की मांग करने के लिए नहीं किया। मेरे प्रिय मित्रों, हमें सच का सामना करना है कि यह हमेशा परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वह चंगाई दे। जो भी हो, कभी कभी यह परमेश्वर की इच्छा होती है कि वह चंगाई दे। मित्रों, किसी तंबू में या सभागृह में जहां पर चंगाई सभा का विज्ञापन दिया जा रहा है, वहां जाने के बदले में आप सीधे उस महान वैद्य यीशु मसीह के पास क्यों नहीं जाते हैं? आप यह ढूंढें कि यदि आपकी चंगाई उसकी इच्छा में है तो मैं दैविक चंगाई पर विश्वास करता हूं, लेकिन जो लोग दैविक चंगाई करता है उन पर नहीं। जो लोग इस पृथ्वी पर दावा करते हैं कि उनके पास सामर्थ है, उनके पास जाने के बदले मैं महान वैद्य यीशु के पास जाना पसंद करूंगा, और उस कोढ़ी के साथ कहूंगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, जो हमें पद 2 में मिला था। तब चाहे हम ठीक हो या ना हो, वह महिमा पाता है, और हम चाहते हैं कि वह महिमा पाए। स्पष्ट रूप से पौलुस इस आधुनिक पंथ के बारे में कुछ नहीं जानते थे जो प्रायश्चित में चंगाई की खोज कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर चंगाई दे सकते हैं और देते हैं, परंतु उनके द्वारा से नहीं जो अपने आप को विश्वास में चंगा करने वाले कहते हैं। हम मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय उसके 18 पद में आगे पढ़ते हैं, यीशु ने जब अपने चारों ओर भीड़ को देखा तो उस पार जाने का आदेश दिया। यहां पर ध्यान दें कि उसके चारों ओर एक बड़ी भीड़ है। वास्तव में उसने हजारों लोगों को चंगा किया है, और उन सभी के व्यक्तिगत घटना का लेख यहां पर नहीं है। इस सत्य को यूहन्ना अपने सुसमाचार में प्रमाणित करते हैं और लिखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 30 और 31 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने बहुत से अन्य चिन्ह भी चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, परंतु ये जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए आज हम अपने अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन हम अगले अध्ययन में फिर से एक नए विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप इन विषयों पर अवश्य विचार करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे एवं सहायता प्रदान करें।
प्रभु ख्रीस्त मेरे प्रभु ख्रीस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ, मैं भटका राही।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल एवं नया नियम उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोता, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। अब आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, 9958820414। आप हमें ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।